Hare Krishna, this lecture on Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 15, Shloka number 44, given in Dwarka Temple, on the topic Mode of Renunciation, on 30th April 2016, by myself, Prashant Mukund Das.
Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaivam Narutamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayam Mudire. Nashti Prayeshu Abhatreshu. Nityam Bhagavat Sevaya. Bhagavati Uttam Shloke. Bhaktir Bhavati Nishtaki. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Nand Gop Kumaraya. Govindaye Namo Namaha.
Hare Krishna. So, आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद जिसका नाम है सृष्टि उसके 15वें अध्याय पांडवों की समयक निवृत्ति के 44वें श्लोक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं. तो हम सब साथ में इसको पढ़ सकते हैं.
उदीचिं प्रविवेश आशाम गत्पूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायाम नावर्तत यतो गता. उदीचिं प्रविवेश आशाम गता पूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायाम नावर्तते यतो गता. उदीचिं प्रविवेश आशाम गता पूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायेत् नावर्ते तयतो गतः. उदीचिं प्रविवेशाशाम गतो पूर्वा महात्मा हृदि ब्रह्मा परं ध्याया नावर्तते यतो गतः. उदीचिं प्रविवेश आशाम गतो पूर्वा महात्मभिः हृदिं ब्रह्मा परं ध्यायाम नावर्तते यतो गतः. उदीचिं परिवेशाशाम गतो पूर्वा महात्मभिः
ब्रह्मा परं ध्यायाम.
माताजी अनुवाद पढ़ेंगे इसका सब लोग साथ में। तब उन्होंने उत्तर दिशा की और अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा सुकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सकें। वे जहाँ कहीं भी गए इसी तरह रहे। तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से ये विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। हम पहले कई बार ये बता चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यव्रत के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सारे संबंधों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया जाता है। इस दृष्टि से प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती थी और इस तरह महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते थे। गृहस्थ जीवन को ना कोई राजा ना कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतएव सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में शत प्रतिशत लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि ये प्रमाणिक पथ है। भगवान भगवत गीता में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। भगवान के प्रति एकनिष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए महाराज युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सूचक है। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा भगवत गीता में असित देवल नारद तथा व्यास जैसे महापुरुषों के संदर्भ में की गई है। इस प्रकार उत्तरा पथ के लिए ग्रह त्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और अपने पूर्वजों तथा सभी परम भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते रहे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाते स्वदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास
आसादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय का 44वां श्लोक, ये अंतिम श्लोक जो कि पिछले 8 श्लोकों में बताया गया कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने अपने जीवन में परिवर्तन लाए और अपने सब कुछ परिवार आदि को त्याग करके संन्यास लेने की तरफ अग्रसर हुए। जैसा कि कई बार पहले भी बताया गया है कि हमारे जीवन में 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण है और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो हर एक व्यक्ति को इन आश्रम में जाना चाहिए। तो कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि अभी तो किसी की उम्र 100 साल होती नहीं है, तो आप कैसे बोलते हैं कि 75 के बाद सन्यास लें, पहले ही 75 से चला गया व्यक्ति छोड़कर, तो फिर सन्यास कैसे हुआ? तो उसमें बता रहे थे कि इसको परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप किसी को लगता है कि मेरे जीवन की अवधि अब 80 साल या 70 साल हो गई है एवरेज एज, तो 25% में डिवाइड कर दें, 25 ईयर्स की बजाय 25% में डिवाइड कर दें, 25% जीवन ब्रह्मचारी, 25% गृहस्था, फिर वानप्रस्था या सन्यास। पर प्रयास ये करना चाहिए कि जीवन ब्रह्मचारी जीवन से सीधा सन्यास की तरफ अग्रसर हो सके अगर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में है और उसके बाद भक्ति में आता है या उस समय परिस्थिति में गृहस्थ में जाता है, तो उसको फिर वानप्रस्थ और सन्यास में किस तरह से आना चाहिए, ये युधिष्ठिर महाराज हमको सिखा रहे हैं अपने आचरण से। पिछले 8 श्लोकों में उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने अपने कपड़ों का त्याग किया, अपने दिशाओं का त्याग किया, अपने घर परिवार का त्याग किया, सब कुछ त्याग रहे हैं और फिर वो सन्यास के लिए जंगलों की तरफ निकल गए हैं। तो इसमें ये प्रश्न उठता है, क्या एक्सटर्नल बाहरी रूप से अपने आवरण को बदल लेने से ही सन्यास कहलाता है क्या? तो इसीलिए आज हमने अपने टॉपिक का नाम रखा था मोड ऑफ रिनन्सिएशन। तो खाली बाहरी रूप से, हाँ, तो इसमें अगर हम देखें तो पिछले 8 श्लोकों में पहले एक्सटर्नल की बात हुई है बाहरी रूप से, फिर अंतरंगा, फिर बाहरंगा, बाहर रूप से वो बदल रहे हैं, फिर बाहर, फिर अंतर, अंतर से बदल रहे हैं, फिर बाहर से बदल रहे हैं। तो इसका मतलब खाली बाहर से बदलना वैराग्य नहीं दिखाता है, अगर बदलना है तो कहाँ से बदलना पड़ेगा? अंदर से। तो खाली अंदर से बदलने के लिए फिर जरूरत क्या है कपड़े बदलने की? तो ऐसा भी नहीं है, बाहर का बदलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंदर का बदलना। अभी कोई भक्त अगर शेव हेड किया हो और जीन्स टी शर्ट पहनकर कभी यात्रा कर रहा हो और साथ में पिक्चर लगा रखी हो उसने कोई लेटेस्ट फिल्म, और साथ में बीड बैग भी टंगा हो, तो जितने भी आसपास के लोग हैं उनको क्या दिखेगा कि ये भक्त जो है ना ढोंगी है ना। तो इसलिए उस व्यक्ति को अपने आचरण को भी बदलना है और साथ में बाहरी वस्त्रों को भी बदलना है ना। लेकिन यही नहीं खाली बाहरी वस्त्र बदल लिए और अंदर से गड़बड़ है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए दोनों चीजों को बदलना ही हमारे लिए लाभप्रद है। तो यहाँ पर शब्द आया है उदीचिम प्रविवेश आशाम। उदीचिम, उदीचिम का मतलब है उत्तरी दिशा, प्रविवेश आशाम वहां प्रवेश करने की इच्छा करने वाले। तो उत्तर दिशा में प्रवेश करने की इच्छा करने वाले का क्या मतलब है उत्तर दिशा में प्रवेश? अरे हम तो कभी लेफ्ट को जाते हैं, कभी राइट को जाते हैं, कभी सोचते हैं कौन सी दिशा में प्रवेश करना है। तो यहां इस श्लोक में उदीचिम शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ, उत्तर दिशा? तो इसका कारण है कि उत्तर दिशा जो है वो कई कारणों से महत्वपूर्ण है, भक्ति और भक्त दोनों के लिए, जो भक्ति करना चाहते हैं और जो भक्त हैं उनके लिए 3 कारणों से उत्तर दिशा सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे मुझे लगता है 3 कारण ऐसे हैं। पहला, प्रथम कारण है कि
पितृलोक में जब किसी व्यक्ति के शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का निर्णय लिया जाता है कि इसको कौन सी योनि मिलनी चाहिए, कौन सा लोक मिलना चाहिए, तो उन स्थान पर जो व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ ले जाए जाते हैं, दक्षिण मतलब साउथ, वो लोगों को नर्क प्राप्त होता है। जो लोग पूर्व दिशा में ले जाए जाते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है, जो लोग पश्चिम दिशा में ले जाए जाते हैं उनको नर्क लोक, उनको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, उनको पितृ ऊपर के लोक प्राप्त होते हैं, उनको नीचे के मतलब पूर्व दिशा में जो है उसको ऊपर के पितृलोक, स्वर्गलोक है ना, और तपलोक, महालोक, जनलोक ऐसे प्राप्त होंगे। जो पश्चिम दिशा का है उसको नीचे के मतलब तलातल, रसातल, पाताल जो है सूतल होता है या प्राप्त होंगे। तो उत्तरी दिशा में जाने वाला व्यक्ति जो है वो वैकुंठ की तरफ जाता है, वैकुंठ जाता है। तो उत्तर दिशा इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि उत्तर दिशा में ही वैकुंठ लोक बताया गया है। कि अगर हम प्लैनेट की चर्चा करें तो उस तरह से नर्क जो है वो दक्षिण दिशा में आता है, उत्तर दिशा में वैकुंठ धाम है। तो भक्त की अभिलाषा होती है कि मैं भगवान की सेवा में नित हो सकूं, जो मेरा निवरेरा मूल स्वभाव है। और एक प्रकार से बताया गया कि भक्ति जो माता है, भक्ति जो माता है, भक्ति माता, उनका जन्म होता है दक्षिण भारत में, लेकिन वो चलते 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 उत्तर दिशा की तरफ जाती हैं, हिमालय की तरफ आ रही हैं, वृंदावन की तरफ आ रही हैं, तो वो युवा होती हैं। तो कोई व्यक्ति अपनी भक्ति को अगर युवा करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा दिशा सबसे उत्तम है? उत्तरी दिशा। इसीलिए तपस्वी जितने भी हैं, जितने भी भजन करने वाले भक्त हैं, जो 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 प्रभुपाद जी की फिलॉसफी अभी नहीं जाने हैं लेकिन भजन करना चाहते हैं, तो उन लोगों को कंदराओं में जाने के लिए हिमालय, उत्तरी दिशाएं सबसे ज्यादा रुचिकर लगती हैं। उत्तर दिशा में जाओ, कंदराओं में, गुफाओं में बैठो हिमालय के ऊपर और भजन साधन करो। और तीसरा कारण ये लगता है कि ये जो उत्तर की दिशाएं हैं इनमें यहाँ कर व्यक्ति रह सकता है। तो तीन कारण हुए, एक दक्षिण की दिशा में नरक है और उत्तर की दिशा में वैकुंठ धाम है, और दूसरा कारण कि भक्ति माता जो है युवा हो जाती है जब वो उत्तर दिशा में आती है, और तीसरा कि उत्तर की दिशाओं में हिमालय आता है। तो बताया गया महाजनों येन गतः स पंथा, महाजनों ने जैसा किया वैसे ही भक्त को अनुगमन करना चाहिए। तो यहां बताया कि उनके पूर्वजों, उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ, मतलब उनके पूर्वज जो हैं युधिष्ठिर महाराज के, वो भी कौन से पथ पे गए हैं? उत्तर दिशा में गए। तो इवन युधिष्ठिर महाराज ने जो पालन किया उसी को परीक्षित महाराज ने भी पालन किया। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी महाराज से कथा सुनने बैठे तो कौन सी दिशा में उनका मुख था? उत्तर दिशा में। उन्होंने वो डायरेक्शन देखा, सारी कुशा घास की गद्दियां लगी थी और वहां पर शुकताल के किनारे वो सोच रहे थे मैं कहाँ बैठूं। तो भागवतम में वर्णन आया है दक्षिण तट पर, दक्षिण के तट पर उत्तरी दिशा की तरफ मुख कर कर उन्होंने भागवतम सुनना प्रारंभ किया। तो अगर देखा जाए तो अभी जो मैं, मेरी स्थिति है ये उत्तर दिशा की तरफ मुख है और आपका दक्षिण दिशा की तरफ। तो इस तरह से ये उत्तर है, तो मतलब आपकी स्थिति ठीक है, परीक्षित महाराज वाली ठीक है। तो ये परीक्षित महाराज ने जिस तरह श्रवण किया आप भी उत्तरी दिशा की तरफ मुख कर श्रवण कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है हमारा, मतलब वास्तु के हिसाब से हम सही है, परफेक्ट है। तो सबके सब वैकुंठवासी हो जाएंगे यहाँ से। हरे कृष्ण। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठना ही वो है। तो भजन करते वक्त, जपा करते वक्त भी प्रयास करें कि हमारा मुख अगर उत्तर दिशा की तरफ रहे तो हो जाएगा महाजनों येन गतः स पंथा, जैसा महाजनों ने किया हम भी वैसा ही पालन कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जितने भी भक्त हुए हैं हमारी परंपरा में, हाँ गोस्वामी को लें या आचार्यों को लें, सभी ने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग कर कर वैराग्य के जीवन को अपनाया है ना। सभी ने आध्यात्मिक प्रगति की है अपने जीवन में। भक्ति विनोद ठाकुर, उनके 13 बच्चे थे है ना, लेकिन उन्होंने एक पल नहीं लगाया सोचने में कि कैसे छोड़ के जाऊंगा, क्या होगा, इनको कौन पालेगा बाद में, और सीधा भजन करने के लिए ऐसी स्थिति पे निकलते हैं जब वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपना कार्यभार संभालने के लिए। ये नहीं कि अब बच्चे भी कमाने लग गए, बच्चे भी काम करने लग गए और हम जो हैं अभी भी ये सोच रहे हैं इनके प्रॉफिट से जो आएगा उससे मैं अब आनंद लूंगा क्योंकि मैंने तो अपना जीवन पैसे कमाने में गुजार दिया। जैसे आजकल कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि मून के ऊपर, चंद्रमा पर प्लॉट कट रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है आप लोग बुकिंग कराओ अभी, तो बताते हैं कि कुछ मिलियन डॉलर्स देने से आपको चंद्रमा पर मकान मिल जाएगा, जमीन मिल जाएगी। और उसकी अलॉटमेंट कब मिलेगी, तो बोल रहे हैं आपको नहीं मिलेगी, आपके पुत्र को भी नहीं मिलेगी, आपके प्रपौत्र मतलब आपके नाती तीसरी वंश को मिलेगा, प्रपौत्र को मिलेगा। तो आप सोचिए उस व्यक्ति ने मिलियन डॉलर कमाने के लिए कितना कुछ मेहनत किया और बाद में मकान किसको मिलेगा, प्रपौत्र को जाके, और वो भी गारंटी थोड़ी है। आजकल नॉर्मल बिल्डर चीटिंग कर जाते हैं, वो भी चीटिंग कर गए तो मिलियन डॉलर बर्बाद हुआ। लेकिन लोग अपने स्टेटस और ईगो के कारण आजकल बड़े ये बातें प्रचलित हैं, सब पूछते हैं हाँ भाई आपने बुकिंग करवाई चंद्रमा पे। तो परीक्षित महाराज जब कथा सुनने बैठे भागवतम की, तो उस समय देवता देवलोक से नीचे उतर कर आए हैं, देवता नीचे उतर कर आए हैं और देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सारे तो आए नहीं, अभी 33 करोड़ देवी देवता सारे आ जाते तो सारे तो आए नहीं, लेकिन मुख्य देवता नीचे आए और बाकी देवताओं ने पुष्प वृष्टि शुरू करी, क्योंकि उन्होंने सबसे उत्तम चीज अपने जीवन में करना प्रारंभ किया। क्या करना शुरू किया? श्रीमद् भागवतम का श्रवण। तो मतलब जब भक्त 8 बजे द्वारका मंदिर में आकर बैठते हैं तो देवतागण क्या करते हैं, आप लोगों के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। अदृश्य पुष्प है, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन पुष्प वृष्टि हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में भागवतम श्रवण के लिए आ जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर देवता प्रसन्न होते हैं कि इसने अपने जीवन का सबसे उत्तम कार्य किया है। और कुछ भी कर सकता था, 1 घंटे की तो बात है, कहीं बाहर टहल के काट देता, सोकर काट देता, प्रसाद खा के घर पे चला जाता, बिजली का बिल भरने चला जाता, बड़े काम है आजकल गृहस्थ जीवन में। लेकिन कोई व्यक्ति अपना समय निकाल कर अगर पहुंच जाए तो उसके ऊपर देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। परीक्षित महाराज पर पुष्प वृष्टि हुई है। तो ऐसी स्थिति है जिस व्यक्ति की, जो भगवान की कथाओं में श्रवण करने के लिए उत्सुक है, उत्कंठित होकर कथा सुनता है। कैसे सुनता है? उत्कंठित। उत्कंठित का क्या अर्थ है कि अपने मुख को ऊपर उठाओ, कंठ को ऊंचा करके, ऐसे करके कथा नहीं सुनना चाहिए, बीच बीच में झपके भी आते हैं तो वो कथा नहीं है। एक्चुअली कथा है उत्कंठित होकर। तो उत्कंठित का मतलब उत्साही भी होता है, और अगर उसको उसकी परिभाषा करें तो ऊंचा कंठ कर कथा सुननी चाहिए, कमर सीधी और ऊंचा कंठ। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से उत्कंठित होकर कथा सुननी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपने परिवार में 13 बच्चों को पालने के बाद अपनी गद्दी उनको प्रदान कर कहां चले गए, भजन करने के लिए उड़ीसा में, पुरी में स्थान है, भजन कुटीर है भक्ति विनोद ठाकुर की, है ना, जहाँ पे अभी इस्कॉन का मंदिर खुला हुआ है। तो वो वहां बैठकर उन्होंने भजन किया। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जैसे पद को नवाब हुसैन शाह के घर से त्याग कर कहां चले जाते हैं, वृंदावन, और वहां जाकर निरंतर भजन करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, वैराग्य की परिभाषा अगर उनसे देखी जाए, उनसे बड़ी और कोई परिभाषा नहीं है। मैं एक बार सोच रहा था इस्कॉन डिजायर ट्री, जिसपे ज्यादातर भक्त जाते हैं और कथा सुनते हैं, वहां से डाउनलोड करते हैं, तो एक दिन हमने ऐसे ही संन्यास के बारे में लेक्चर ढूंढे, तो जब तकरीबन 25 से 30 लेक्चर मैंने सुने होंगे। हर लेक्चर में वैराग्य जहां चल होता है, जहां पर सन्यासी मतलब बड़े बड़े महाराज, यहां तक प्रभुपाद भी जब प्रवचन दे रहे हैं तो हर प्रवचन में रघुनाथ दास गोस्वामी के बिना सन्यास का लेक्चर ही समाप्त नहीं होता। तो जहां रेनन्सिएशन की बात आए, सन्यास की बात आए, वैराग की बात आए, सबसे बड़े वैरागी का अगर नाम लेना चाहें तो हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे उदाहरण है हमारी परंपरा में रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनकी लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी, लक्ष्मी जैसी सुंदर पत्नी, और साथ में 20 लाख रुपए का इनकम, एनुअल इनकम, आज आईटी इंजीनियर भी बोलता है ना 20 लाख रुपीज पर एनम, तो लोग बोलते हैं भाई सही पैकेज है, 20 लाख रुपए सालाना इनकम उनके घर की, और लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी, उसके बाद भी उनकी इच्छा क्या है, बस जैसे तैसे करके भी मैं कहां चला जाऊं, इनके चरणों में चला जाऊं, भगवान चैतन्य के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इतनी जल्दबाजी मत करो, उन्होंने कहा सिरहैया घरे जाओ ना हैला बैतूला, क्रमा क्रमा पाया लोके बवा सिंधु कूला। उन्होंने कहा इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पहले साधना को सिद्ध करो, भजन को सिद्ध करो, और उसके बाद जब स्थिर तुम्हारा मन हो जाए उसके बाद तुम वैराग्य को लेना। तो कई लोग सिर्फ पहनावी वस्त्रों को बदलने में उत्सुक रहते हैं, है ना, और अंदर से उनका मन स्थिर नहीं होता। तो अंदर से मन स्थिर होना चाहिए, तभी सच्चा वैरागी कहलाएगा, फिर बाहरी वस्त्रों को भी बदलना चाहिए। तो आप देखिए कि कई प्रकार के वैरागी सन्यासी कहलाते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, एक वैराग है जिसे कहते हैं मरकट वैरागी। मरकट का मतलब है बंदर, संस्कृत में मरकट मतलब बंदर। अभी बंदर का वैराग कैसा होता है, कभी इस डाल से कभी उस डाल पे, इट्स लाइक अ जंपिंग मंकी, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, बस फ्लिकरिंग माइंड, है ना। जैसे जपा करने भी कोई व्यक्ति बैठे और वो जपा शुरू करे और उसके बाद दो माला के बाद में ही उसका मन फ्लिकरिंग हो जाए, बस अब थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, थोड़ा सा टॉक कर लेता हूँ, तो वो बात करना चाहता है, पानी पीना चाहता है, उसका मन बार बार भटक रहा है, तो वो असली वैराग नहीं है। लेकिन हाँ, भक्त प्रयास कर रहे हैं, एक ना एक समय पर वो सच्चे वैरागी बन पाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी चीज को लेकर पब्लिसिटी करता है कि नहीं नहीं हम तो वैरागी हैं, हम तो सीनियर डिवोटी हैं, हम बड़े महान भक्त हैं, ऐसे जाकर अगर प्रचार करता है तो गलत है। तो उसका मन तो अभी कैसा है, मरकट वैरागी, फ्लिकरिंग माइंड है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इसीलिए कहते हैं जो मन की सुनते हैं वो मंकी हो जाते हैं ना, मन की, है ना, तो मंकी टाइप में होते हैं व्यक्ति, मन की सुनते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। और ऐसा वैरागी है मरकट बंदर, ना खाने के लिए उसके पास कुछ है, ना पहनने के लिए कुछ है, ना बैंक बैलेंस है, एकदम निर्वस्त्र, कहे क्या साधु है, क्या देखो कपड़े तक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक किलो आम की टोकरी देखते ही झपट के खाने भागता है, छोड़ देता है सब कुछ, भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, बंदर हूँ मैं, मरकट हूँ। वैरागी ऐसा है, भोगी है वो, वैरागी नहीं है। और दूसरे प्रकार का वैराग बताया गया है आवेश वैराग, गुस्से में वैराग आ जाता है लोगों को, है ना। जैसे गृहस्थ जीवन में अधिकतर वैराग आता है, ऐसा गुस्सा आया कि सोच लिया कि अब छोड़कर चला जाऊंगा, और पत्नी को बोल देता है तुम्हारे साथ तो रहना ही नहीं है, तेरे साथ तो जब से शादी हुई है तब से मेरा जीवन खराब हो गया, ऐसे बोलते कई लोग, तो मैं तो बस अब तुरंत छोड़ करके जहां चला जाऊंगा, वृंदावन चला जाऊंगा, मायापुर चला जाऊंगा, पुरी चला जाऊंगा, भजन करूंगा। और गुस्से में क्या करता है, ऑफिस भी नहीं जाता और अपनी माला वाला उठा करके चला जाता है। और फिर जब भटकता है, प्रसाद नहीं मिलता, कोई खाना बनाने वाली नहीं है, प्रसाद नहीं मिल रहा, और बेचारा भटक रहा है, ट्रैवल जल्दी जल्दी में पैसा भी लेना भूल गया, लक्ष्मी भी नहीं लिया अपने साथ में, और बस में चढ़ा, ट्रेन में चढ़ा, उन्होंने कहा टिकट पैसा लाओ, वो तो घर रह गया, और घर तो मना कर दिया, वापस कभी नहीं जाऊंगा, अब तो कैसे करूं। फिर शाम तक वापस आ जाता है वो, तो पत्नी कहती आप तो सुबह वृंदावन की ओर निकल गए थे, वापिस कैसे आए। तो बोलता है ओ मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आया हूँ, तेरी शक्ल देखना कौन चाहता है, मैं तो बच्चों के लिए आया हूँ, शाम को बेचारे कहेंगे पिताजी कहाँ चले गए, इतना प्रेम करते हैं मुझसे, है तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, बच्चों के लिए आया हूँ, जैसे ही ये बड़े होंगे तुरंत उसी दिन वृंदावन, बस। तो ये आवेश वैरागी, वैरागी नहीं है, आवेश गुस्से गुस्से का वैरागी है। और एक प्रकार का वैराग है जिसे कहते हैं शमशान वैराग्य, मशान वैराग या शमशान वैराग, क्रिमिनोट्रियम रिनंसिएशन। जब अर्थी जाती है, राम नाम सत्य है या हरे कृष्णा हरि बोल हाँ, तो सबको लगता है यार क्या जीवन है यार, सब आपस में बातें करते हैं प्रभु जी सच में कुछ नहीं रखा, क्या हम लड़ते रहते हैं झगड़ते रहते हैं, मेरा डोनर तेरा डोनर है, क्या हम करते रहते हैं, मेरी पार्टी तेरी पार्टी, मैं प्रभु तू प्रभु, मैं बड़ा तू छोटा, क्या करते हैं हम, कुछ नहीं रखा प्रभु जी, हम सब तो सच्चिदानंद आत्मा है, एक दिन शरीर छोड़कर चले जाएंगे, भक्त का कोई भरोसा है, प्रभु जी कल से प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक भजन करेंगे, आपस में प्रेम करेंगे बस। लेकिन तुरंत क्रिमिनेट्रियम से, वहां से शमशान से जैसे बाहर निकलते हैं, वापस अपनी गद्दी संभालते हैं, और फिर उसके बाद में जैसे ही बात शुरू होती है, जीवन की परिस्थितियां वापस आती हैं, कोई बिजनेस में जाता है, कोई जॉब में जाता है, भक्त अपनी सेवाओं में आते हैं, तुरंत फिर देखते हैं अरे आज कितना कलेक्शन हुआ और उसके बाद में वो एक भक्त दूसरा भक्त का कलेक्शन वाला डोनर इधर उधर हो जाए, अरे प्रभु जी फिर वैसे ही शुरू होता है। तो इसका अर्थ यही है कि वो व्यक्ति जो है वो उस समय शमशान का वैरागी था, सच्चा वैरागी नहीं है। सच्चा वैरागी तो बोला गया है युक्त वैरागी है। युक्त वैराग का मतलब है जिस भी परिस्थिति में रहे वो ये सोचे कि हर चीज कृष्ण की है, मेरे बच्चे हैं तो ये मेरे नहीं है, किसके हैं, ये भगवान के दी हुई संपत्ति है जिनकी मुझको रक्षा करनी है। मेरे पास मंदिर की कोई गद्दी है, मंदिर की कोई पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, मंदिर का कोई प्रॉपर्टी है मेरे पास, तो मेरी नहीं है, किसकी है? भगवान की है। और उसे मुझे भगवान की प्रसन्नता में इस्तेमाल करना है। वो है सच्चा वैरागी, वो चाहे कैसे भी रहे। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, अनासक्तस्य विषयान् यथार अहम् उपयुज्यतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधये युक्त वैराग्य उच्यते। युक्त वैराग्य उच्यते, वो युक्त वैरागी है जो अनासक्तस्य विषयान्, विषयों से अनासक्त हो गया हो, कोई उसके मन में मेटीरियल डिजायर ही नहीं है, ना तो पोजीशन की, ना पूजा की, ना लाभ की, ना प्रतिष्ठा की, कोई उसके अंदर कोई अभिलाषा नहीं है। अनासक्तस्य विषयान् यतार अहम उपाजत निर्बंध कृष्ण संबंधे, हर एक वस्तु को कृष्ण संबंधी मानता है वो व्यक्ति है युक्त वैराग्य उच्चत है, वो युक्त वैरागी है ना। लेकिन जब तक हम इसी में रहेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा, मेरे को कितना सम्मान मिलता है, उसको ज्यादा मुझे कम, वो आगे क्यों मैं पीछे क्यों, तो इसका मतलब अभी तक हम उच्च वैरागी नहीं है। हरि बोल। ठीक, फूलों में रखिएगा इसको, फूलों में रखिएगा। हरे कृष्णा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी ने हर एक चीज को युक्त वैराग्य दिखाया। कैसा युक्त वैराग्य है? युधिष्ठिर महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, परीक्षित महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने घर का त्याग किया, तो इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए घर का त्याग करने के लिए कि परिवार की पत्नी बच्चे पड़ोसी उनको हम माया मानने लगे, तो वो नहीं है। वो लोग भी तो कृष्ण की संपत्ति हैं, कृष्ण के अंश हैं, तो उनको उस स्थान पर उस स्थिति में देखने वाला व्यक्ति सच्चा युक्त वैरागी है। और उनको उसी तरह से अपने भोग की वस्तु ना मानते हुए, अपने अटैचमेंट की वस्तु ना मानते हुए, उनको ये सोचे कि मुझे तो इनकी सेवा करनी है, कृष्ण ने मुझे कुछ समय के लिए रखा है, उसके बाद समय अनुकूल मुझे वैराग्य भी लेना है। तो रहना है वहीं पर, लेकिन अटैचमेंट के साथ नहीं रहना है, प्रेम पूर्वक भी रहना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने जब वैराग्य लिया, तो उससे पहले भी प्रभुपाद जब अपने परिवार के साथ रहते थे, तो कभी झांसी में प्रचार करने जाते थे, कभी दिल्ली में प्रचार करने आते थे, कभी वृंदावन में प्रचार करने के लिए या गुरु से आज्ञा लेने के लिए आते थे, तो कभी ऐसा नहीं था कि परिवार में इतने लिप्त हैं कि भूल ही जाएं कि मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम है या परिवार वालों को पालना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो अपने लक्ष्य को ना भूलते हुए, और ऐसा भी इसीलिए उन्होंने समय अनुकूल आने पर वैराग भी लिया अपने जीवन में। जैसे प्रभुपाद जी जब वैरागी बने, तो प्रभुपाद जी ने हर एक चीज का इस्तेमाल भगवान की सेवा में किया। डिक्टाफोन प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल किया, रिकॉर्डर्स, अभी देखा जाए तो ऐसी मशीनरीज तो कैसी हैं, मटेरियल हैं, उनको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाएं। तो प्रभुपाद जी ने उस डिक्टाफोन से क्या बनाया हमारे लिए? श्रीमद् भागवतम। अगर वो डिक्टाफोन नहीं होता जिससे डिक्टेट करते थे और वो रिकॉर्ड होता था और बाद में भक्त उसको उसको सुन करके टाइप करते थे और फिर प्रिंट आउट लेकर प्रिंटिंग होता था, अगर वो डिक्टाफोन नहीं होता, आज भी वृंदावन के म्यूजियम में रखा हुआ है, अगर वो नहीं होता तो आज श्रीमद् भागवतम प्रकट नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने एक भौतिक वस्तु को कृष्ण की सबसे उत्तम चीज प्रदान करने में या फिर स्वयं कृष्ण को प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया। सोचिए आप, ये है युक्त वैरागी। अभी वैरागी लोग सोचते हैं कि अब हम कुछ चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये फोन यूज करना, गाड़ी यूज करना, इस्कॉन वाले कोई वैरागी है, ये लोग तो भोगी है। तो उन लोगों के लिए प्रभुपाद सबसे उत्तम उदाहरण है कि वो किस तरह से हर एक चीज को कृष्ण की सेवा में लगा पाए। डिक्टाफोन से उन्होंने श्रीमद् भागवतम दिया। आप देखिए, जब भगवान कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर लीला धाम में प्रवेश कर रहे थे, तो उद्धव और अनेकों भक्तों ने सोचा कि भगवान का आप संग कैसे प्राप्त होगा, तो कैसे प्राप्त होगा भगवान का संग, बता सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि अब मैं अपने आप को श्रीमद् भागवतम के रूप में परिणित कर रहा हूं, तो इसीलिए 12 जो भगवान के स्कंद हैं भागवतम के, वो भगवान के 12 अंग बताए गए हैं। जैसे शुरुआत के प्रथम 2 स्कंद भगवान के दो टांगे हैं, उसके बाद 2 स्कंद भगवान की जांग है, इस तरह से भगवान का उदर 5वां स्कंद, 6ठा स्कंद और 7वां स्कंद हाथ हैं, इस तरह से चलते रहे 8वां स्कंद वक्षस्थल, 9वां स्कंद कंठ, 10वां स्कंद भगवान का मुख, इस तरह से 12 स्कंदों में भगवान को पूरा विभाजित कर देखें, तो पूरा श्रीमद् भागवतम एक प्रकार से कृष्ण है। और श्रीमद् भागवतम जब हम प्रथम स्कंद पढ़ते हैं, तो इस प्रथम स्कंद के शुरुआत में जब आप पहला पेज पढ़ेंगे यहां पर, तो शुरू होते ही बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है, इसमें नहीं है, हाँ ये रहा, ये फर्स्ट पेज में ही यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, बिल्कुल फर्स्ट पेज में श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट पेज में, अभी किसी ने पता नहीं ध्यान से पढ़ा हो नहीं, इसमें लिखा है कृष्णे स्वधर्मो भुगगता धर्म ज्ञान आदिभिः कला नष्ट दृशम एषा पुराणर्को अधनोदिति। इसका मतलब है कृष्णो स्वधर्मन उपगतः, कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद में धर्म ज्ञान आदि भी सहा, अब धर्म और ज्ञान ने किसकी शरण ग्रहण करी, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो कहते हैं धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं आता हूं। अभी भगवान अगर स्वधाम चले गए तो धर्म और ज्ञान ने किसकी शरण ग्रहण करी, तो आया कृष्ण स्वधाम उपगते, जैसे ही स्वधाम गए धर्म ज्ञान आदि भी सहा, धर्म और ज्ञान ने क्या किया, कलो नष्ट दृशम एषा, कलयुग के जो दृष्टि है उसको नष्ट करने के लिए पुराण अर्को अधुनोति थे, पुराण के रूप में भगवान उपस्थित हुए, और वो कौन सा पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण, तो भगवान है भागवत पुराण, ये कोई नॉर्मल पुस्तक या बुक नहीं है कि हम क्यों माने इसको, लोग बोलते हैं जी शिव पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है, आप भागवत पुराण की चर्चा कर रहे हैं, वो पुराण ग्रंथ है, ये पुराण भगवान है, तो ये इसमें फर्क है। जब गीता बोल रहे हैं भगवान तो वो स्वयं बोल रहे हैं, तो सोचते हैं भागवतम तो वेद व्यास जी ने लिखा है, इसे भगवान थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन ये तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपने को इस रूप में परिणित कर रहा हूं, तो ये भागवतम भगवान है स्वयं में। प्रभुपाद जी ने हर चीज का इस्तेमाल किया, डिक्टाफोन से श्रीमद भागवतम प्रदान किया, स्वयं भगवान हमें प्रदान कर दिए, और शिप का इस्तेमाल किया, अगर वो शिप का इस्तेमाल नहीं करते तो वो कभी विदेश नहीं पहुंच पाते, बॉस्टन जाकर उन्होंने कीर्तन, हाँ महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन फैलाने के लिए एक शिप को इस्तेमाल किया, एक जहाज को इस्तेमाल किया, एरोप्लेन का इस्तेमाल किया, 108 मंदिरों की स्थापना करने के लिए सिर्फ कुछ वर्षों के अंदर, 11-12 वर्षों के अंदर 14 बार पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने दर्शन किया, सब लोगों को भगवान का दर्शन कराया और 108 मंदिरों की स्थापना करी, अगर हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करते तो इतने सारे लोगों को कैसे भला कर सकते थे, तो हमें ये बोलना चाहिए लोगों को। प्रभुपाद जी ने कृष्ण कथा को प्रचार करने के लिए शुद्ध कृष्ण कथा का, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी से पहले कोई प्रचार नहीं कर रहा था या प्रभुपाद जी के बाद कोई प्रचार नहीं कर रहा भागवतम का, आजकल भागवत कथाएं तो इतनी आसानी से मिल रही है टेलीविजन पे, हर जगह आप लिख लो पंडालों में कथा सप्ताह सप्ताह कथा चल रही है, लेकिन वो क्या कथा है सच में, तो भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि किस तरह से भागवतम सुनना चाहिए, कौन है व्यक्ति भागवतम का सच्चा भक्त, तो यहां बताते हैं तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रेशे भूरी तेजसहा अहम् च अध्यगमम् तत्र निर्वष्टस्य तदा अनुग्रहात् ओहम् वा श्रवणिष्यामि यथा आदितम् यथा मति। जिस व्यक्ति की मति में कृष्ण है वो व्यक्ति दूसरों को कृष्ण दे सकता है, मेरे पास अगर 100 रुपए नहीं है और आकर मुझसे भक्त पूछे IYF के कि प्रभु जी जरा 100 रुपए देना, आप तो ग्रस्त हैं, आप तो जाते हैं, आपके पास तो पैसे होंगे, हम तो ब्रह्मचारी बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ पैसा नहीं है दीजिए, तो हम कहें कि प्रभु जी 100 रुपए तो नहीं है तो मैं दे नहीं सकता, और फिर जाएं और फिर बोलें हरिरूप प्रभु जी आप भी ग्रस्त हैं आपके पास तो होंगे, तो ये कहें हाँ मेरे पास 200 रुपए हैं 100 आप ले लीजिए, तो जिसके पास होगा वही तो दे सकता है, जिसके पास है ही नहीं वो कैसे देगा। तो जो लोग सिर्फ धन कमाने के लिए कथाओं का प्रचार कर रहे हैं, तो जब आप इस बात को स्थापित करना चाहें तो भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 44वें श्लोक को ध्यान से पढ़िएगा जो हमने अभी पढ़ा, तत्र कीर्तयन्तो यथा विप्रः, वो ब्राह्मण भगवान की कथाओं का कीर्तन कर सकता है जिसकी मति में कृष्ण हो, जो धन के लिए प्रचार ना कर रहा हो। जैसे एक बार हुआ, एक बार एक व्यक्ति रामायण की कथा कर रहा था, रमणी बोले जाते हैं रामायण की कथा करने वाले, रमणी, और बहुत सुंदर तरीके से कथा कर रहा है, और कथा शुरू हुई शुरुआत से बालकांड, तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं क्या भक्त है, भगवान के पैदा होने पर इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद अयोध्या कांड आया, उसमें भी आंसू आ रहे हैं कि अरे भगवान का राज सिंहासन होने वाला, अच्छा भगवान को तो वो मिल रहा है ना, संन्यास को भगवान को बोल रहे हैं कि आप वनवास जाओ, इसके लिए इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। फिर आगे अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और फिर सुंदर कांड, और वो रोता ही जाए, रोता है और रोना बढ़ता चला जाए, और फिर आखिरी में लंका कांड। अब तो भगवान ने विजय प्राप्त कर लिया है, फिर भी रो रहा है, और उसके बाद में तो बस अयोध्या वापस कौन सा कांड आता है, उत्तर कांड। तो उन्होंने कहा अब तो आखिरी उत्तर दिशा में चल पड़े भगवान भी, जो हमने दिशा की बात करी, अब उत्तर दिशा में अयोध्या धाम वापस जा रहे हैं उत्तर कांड, और अभी भी ये रो रहा है। तो भक्तों ने पूछा जो साथ में बैठे थे कीर्तन वाले, महाराज इतना तो आप कभी नहीं रोए जितना आज रोए हैं, ऐसा क्या है आज, आज लगता है भगवान का वैराग्य आपको बहुत सता रहा है। कह रहे ऐसी बात नहीं है, मेरे रोने के पीछे कारण यह है कि हर बार मुझे कथा का पेमेंट मिलता था। पिछली बार जब मैंने इस ऑर्गेनाइजर की कथा करी तो वहां पर बिजली के कारण कथा संपन्न नहीं हो पाई, तो उतने ही पैसे में मुझे इन्होंने कहा आपको दोबारा कथा करनी पड़ेगी। तो मैंने जब दोबारा कथा करना शुरू किया तो अब मुझे पता है कि इस कथा के बाद मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है क्या अब मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जितने लोग जब कथा बोल रहे हैं वो कृष्ण बोलते तो उनको गड्डी नजर आती है 1 लाख, फिर उनको दूसरा भगवान के बारे में 2 लाख। अभी जिसको गड्डियां नजर आ रही हैं उस व्यक्ति का दिया हुआ ज्ञान अगर आप सुनेंगे तो आपको भी कृष्ण की जगह धन और भौतिक चीजें ही नजर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कृष्ण नजर आए तो सिर्फ उसी से कथा सुने जिसके मति में कौन है, कृष्ण है। इसीलिए हम लोग जब आशीर्वाद देते हैं भक्तों को, भक्त एक दूसरे को, जब बड़े सीनियर डिवोटीज नए बच्चों को, यंग डिवोटीज को आशीर्वाद देते हैं तो क्या देते हैं, बाहर के भौतिक जगत में देते हैं दूधो नाओ पूतो फलो, दूध से नाओ और फिर भगवान करे बच्चे हो तुम्हारे घर में, और बताने भौतिक संसार में फंसाने वाला आशीर्वाद है। लेकिन भक्त आशीर्वाद क्या देते हैं, कृष्णेर मतिर अस्तु, आपकी मति कैसी हो, कृष्णमयी हो। तो ये आशीर्वाद देना चाहिए हमें अपने बच्चों को, कृष्णेर मतिर अस्तु, आपकी मति कैसी हो, कृष्णमयी हो। तो ये देखिए फर्क है भौतिकवादी व्यक्ति में और एक ऐसे व्यक्ति में जो कि संसार में फंसा हुआ है। तो एक बार गौर गोविंद स्वामी महाराज भुवनेश्वर मंदिर में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो इस प्रकार के वैरागी हैं, मरकट वैरागी या फिर शमशान वैरागी, आवेश वैरागी, इसको फाल्गु वैरागी भी बोलते हैं। फाल्गु मतलब फालतू, फाल्गु मतलब नकली, नकली वैरागी जो व्यक्ति है। तो उन्होंने बताया उस प्रवचन में, बिहार में एक नदी बहती है, मैंने पता सुना है, देखा नहीं है, पता नहीं जो बिहार के लोगों बता सकते हैं, बिहार में एक नदी बहती है जिस नदी को बोला जाता है फाल्गु नदी। क्यों बोला जाता है फाल्गु नदी, देखने में उस नदी के ऊपर लगेगा सूखी पड़ी है, आप पांव रखो और पैदल पैदल पार कर जाओ, लेकिन जब उसकी मिट्टी को उठाओ हाथ में तो उसके नीचे से पानी निकलता है। तो मतलब कोई व्यक्ति अगर पांव रखे तो पानी में गिर जाए, तो इसका मतलब हुआ कि वो नदी ऊपर से तो रेतीली है, सूखी है, लेकिन अंदर उसमें पानी भरा है। तो ऐसे ही वैरागी हो सकता है, ऊपर से तो तिलकधारी है, हेड शेव है और उसने शरीर के वस्त्र बदल लिए हैं, अंदर से पानी की तरह इच्छाएं उसकी ऐसी हैं बहुत सारी। सब लोग जब बीड बैग टंगा देखते हैं मंदिर के भक्तों को तो सोचते हैं बड़े वैरागी हैं, और आपके परिवार के लोग भी बोलते हैं अरे इतनी जल्दी साधु बनने की आवश्यकता नहीं थी, और आपको भी लगने लगता है अच्छा साधु बन गया हूं मैं। लेकिन अगर सच्चाई देखें तो अंदर पानी भरा पड़ा है, फाल्गु नदी की तरह ऊपर से सूखे हुए हैं लेकिन अंदर इच्छाओं का बवंडर है पूरा, इतनी इच्छाएं हैं। अब बैठने के बाद, जप करने के बाद, भक्तों के साथ रहने के बाद भी अहंकार, जलन, द्वेष, पूजा मेरी हो, प्रतिष्ठा, ये सब समाप्ति नहीं है। और जब तक ये समाप्त नहीं है तब तक हम लोग मरकट वैरागी हैं, बुरा मत मानिएगा, फाल्गु वैरागी है। युक्त वैरागी तो तब है जब इच्छाएं, अंदर का पानी सूख जाए पूरा का पूरा, है ना, जब पानी अंदर हो जाता है ना तो उसको बोलते हैं, प्रभु जी बता सकते हैं, डॉक्टर हैं, टीबी बोलते हैं, है ना, जब पानी भर जाता है हृदय में, छाती में, तो क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबरक्लोसिस, जब पानी भर जाता है तो टीबी। तो हम टीबी का पेशेंट है वो व्यक्ति जिसकी इच्छाएं अभी बाकी हैं, सूखा नहीं है पानी, और पानी सुखाने के लिए वो मेडिसिन लेता रहता है, और हमारा मेडिसिन क्या है पानी सुखाने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नकलची बंदर नहीं होना चाहिए, हाँ, कि दूसरा व्यक्ति इस तरह से चलता है तो मैं भी चलूंगा। तो इमिटेशन, डिवोटीज को नकल करना, इमिटेट करने के लिए मना किया जाता है कि मैं भी किसी महाराज का फोटो देखा, महाराज पता है कमर पे हाथ रख के चलते हैं जप करते वक्त, तो मैं भी जप करते वक्त कमर, अरे प्रभु जी आप तो बिल्कुल महाराज की तरह लगते हैं थैंक यू। अब महाराज का तो हजार इच्छाएं समाप्त हैं, आपके हृदय में हजार इच्छाएं, कमर पे हाथ रख के चल के जप करने से आपके भक्त महाराज जैसे थोड़ी बन जाएंगे। हाँ प्रचार करते हो, अरे आप तो बिल्कुल महाराज के जैसा बोलते हैं, आदमी को लगने लगता मैं भी महाराज ही हूँ, मेरे भक्त दंडवत चार पांच दंडवत हो गए, ओके थैंक यू आई एम लाइक महाराज। मना भी करेगा, नहीं नहीं मैं तो आपका दास हूँ, लेकिन सच्चाई से हृदय में उसके अंदर बहुत सारे फल फूट रहे होते हैं, वाओ मुझे लोग दंडवत करते हैं, अभी तो मैं महाराज बन गया हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है, फाल्गु वैरागी है। ऐसा एक व्यक्ति था, उसने अपने पड़ोसी को देखा कि वो बहुत धनवान बन गया है, बहुत पैसे कमा रहा है, तो इसने सोचा मैं भी वही करता हूँ जो ये करता है। तो उससे पूछा भाई क्या करते हो, तो बाजार में चिल्ला चिल्ला के बेचता था, प्राचीन मूर्ति ले लो, प्राचीन मूर्ति ले लो, क्या बोलता था, प्राचीन मूर्ति ले लो, प्राचीन मूर्ति। अब मूर्तियां प्राचीन बड़ी कॉस्टली होती हैं, है ना, तो कोई पूछता था कब की है, बोलते थे ये अकबर के जमाने की मूर्ति है, ये कब की है, बोले ये 1800 साल पहले के जमाने की मूर्ति है, ये गौतम बुद्ध के जमाने की मूर्ति, ऐसे करके बेचता था, और लोग एंटीक आइटम समझकर, हाँ प्राचीन वस्तु समझकर ले जाते थे, और उसका धन बड़ा 1-2 लाख देते थे, बड़ा पैसे वाला। और ये गरीब कह रहा साथ में खेलते थे गिल्ली डंडा, ये आगे निकल गया, देखो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उसने ये नहीं समझा कि एक्चुअली ये करता क्या है, उसने सिर्फ शब्द रूप में उसको चीट किया, और क्या बोलने लगा, उसके पास एक मुर्गी थी, तो उसने सोचा मैं भी बेचता हूँ, ये बेचता है मुर्गी, वो मूर्ति बेचता था, इसको लगा ये भी मूर्ति बेचता है तो मैं भी मुर्गी बेचता हूँ। तो उसने बाजार में जाकर ये नहीं सोचा मेरा आइटम क्या है, और वो बाजार में जाकर चलाने लगा, प्राचीन मुर्गी ले लो, प्राचीन मुर्गी ले लो। अभी मुर्गी तो जो खाते हैं वो ताजा खाते हैं ना, फल ताजा खाते हैं, अभी आपको कोई आके कहे प्राचीन बैगन ले लो, प्राचीन मूली, कह रहे अरे प्राचीन कौन खाएगा भाई, बीमारी हो जाएगी, बासा खिला रहा है, नया खिला ताजा खिला। तो उसने सिर्फ शाब्दिक रूप में कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो एक बुद्धिमान उसका कोई मित्र था, वो बोला भाई क्या कर रहे हो, ये प्राचीन बोलोगे ना, मुर्गी प्राचीन नहीं बिकती, मुर्गी तो नई नई बिकती है, आप बोलो ताजा ताजा मुर्गी ले लो, नई नई मुर्गी ले लो। तो उसने कहा अच्छा ये बोलना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों मुझे मारेंगे, क्योंकि पिछले 10 दिन से मैं इसी मुर्गी को लेके पूरे मार्केट में घूम रहा हूँ और कह रहा हूँ प्राचीन मुर्गी ले लो, प्राचीन मुर्गी ले लो। हाँ तो जब इस तरह से होने लगा तो वो फंस गया। तो अब आ जाते हैं इसको भक्तों के समाज में, और फिर उसने कैसे किया वो समझते हैं। भक्तों के समाज में जब व्यक्ति आता है मंदिर में तो सब बोलते हैं आप वैरागी बनिए, वैरागी बनिए, तो गृहस्थ जीवन का व्यक्ति जो है ना वो भी चीटिंग करने लग जाता है, वो भी मैं भी वैरागी बन गया, मैं भी वैरागी बन गया। फिर कुछ समय बाद जाके वो समझ में आता है नहीं भाई, वो वैरागी तब बना जब उसने अपना सब कुछ त्याग कर मंदिर में रहने लगा है, तू उसकी कॉपी नहीं कर सकता कभी भी, वो अभी तुम तो गृहस्थ में रहते हो, तुम तो घर में रहते हो, तुम्हें घर में रहते हो किस प्रकार भजन करना है इसकी गाइडेंस लेनी चाहिए, कॉपी मत करो। तो उस व्यक्ति ने भी यही किया, जब उसके दोस्त ने कहा कि भाई तुम कॉपी मत करो, तुम्हारी तो नई चीज बिकेगी, तुम्हारी पुरानी नहीं बिकेगी, तो मार्केट में जाके बोलने लगा आधी नई ले लो आधी प्राचीन मुर्गी ले लो, आधी नई ले लो आधी प्राचीन मुर्गी। तो बोला पूरा पूरा नहीं बोल सकता झूठ, लेकिन आधा झूठ बोल सकता हूँ। तो अभी तो और उसकी पिटाई होने लगे कि भाई कल तक तेरी प्राचीन थी आधी नई हो गई तेरी मुर्गी। तो इस तरह से उसने दिमाग लगाया, तो मतलब वो बैलेंस करना चाह रहा था। तो लोग भी भक्ति में आने के बाद बैलेंस करना चाहते हैं कि मैं भौतिक में भी प्रमोशन करता रहूं, गाड़ियां चलाऊं, घड़ियां पहनूं, गॉगल्स लगाऊं, जीन्स टी शर्ट पहनूं, स्टाइल से रहूं, और मंदिर में आऊं तो बिल्कुल एकदम सादा वस्त्र में आऊं, वैरागी बन जाऊं, सैटरडे संडे वैरागी, वीकेंड वैरागी। ऐसा वैरागी नहीं चाहिए, वीक वैरागी मीन्स 24 आवर वैरागी, 24 घंटे का वैरागी। हाँ उसको अपना धन कमाने के लिए कुछ वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट पहनूं और उसमें धन अपना इन्वेस्ट करता चला जाए, तो इस तरह का व्यक्ति सच्चा वैरागी नहीं कहलाता है ना। तो हमें समझना चाहिए कि हमें साधना से वैरागी बनना चाहिए, वस्त्रों से वैरागी नहीं। लेकिन हाँ वस्त्र बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उसके अंदर, जब भी मंदिर में आए तो ये नहीं होना चाहिए कि अब तो प्रभु जी हम समझ गए हैं, जब तक हृदय से वैरागी नहीं बनेंगे वस्त्र बदलने का कोई फायदा नहीं, नहीं वस्त्र का बदलने का भी फायदा होता है। वस्त्र क्यों बदलना चाहिए, क्योंकि जैसे आप दीपावली के दिन पूजा पाठ करते हैं, तो उस दिन एक फील होता है, तो आदमी कहता है आज ना एथनिक वेयर पहनेंगे, या ऑफिस में कभी 15 अगस्त बनाते हैं तो बोलते हैं आज क्या है एथनिक पहनेंगे, तो उससे क्या होता है कि एक फील आता है कि हम कौन है, हिंदुस्तानी है हम लोग है ना, भगवान की पूजा करना चाहते हैं। तो ये जो वस्त्र है ना, धोती कुर्ता तिलक कंठी, ये धारण करने से आपका बाहरी रूप से ब्लॉक लग जाता है। जब आप धोती कुर्ता पहनकर चलोगे और आपको सामने पोस्टर लगा होगा कि ना लेटेस्ट फिल्म लॉन्चिंग, अगर आप पैंट शर्ट में होगे तो सोचोगे अरे कौन देख रहा है, देख लेता हूँ, लेकिन धोती कुर्ते में होगे तो वो ब्लॉक लगेगा, आदमी कहेगा नहीं नहीं अभी ना मैं तो धोती कुर्ते में हूँ, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मुझे अपनी इस इच्छा को दबाना चाहिए दबाना चाहिए दबाना चाहिए, तो वो दबा सकता है। तो इसलिए भारी रूप से भी बदलना आवश्यक है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब चैतन्य महाप्रभु से यही चीज पूछी थी कि मैं किस प्रकार से गृहस्थ में रहूं, तो उन्होंने एक प्यार में चैतन्य चरितामृत में कहा, मरकट वैराग्य ना करे लोक दिखाइया। मरकट वैराग्य मत भरो लोगों को दिखाने के लिए। एक व्यक्ति है, हम जानते हैं इस कौन में है, वो पैंट शर्ट में आते हैं मंदिर में जब भी आएंगे, लेकिन जब विदेश जाते हैं या एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं तो धोती कुर्ता तिलक में करते हैं। तो उन्होंने 2-3 सेट रखे हो, तो मैंने एक दिन पूछा कि प्रभु जी आप ये धोती कुर्ता पहनकर ट्रेवल करते हैं और जब मंदिर आते हैं तो पैंट शर्ट पहन के आते हैं, तो बोले एक्चुअली क्या मंदिर में तो सभी जानते हैं भक्त हूँ, लेकिन जब दूसरों को दिखाना होता है तो वहां पर स्पेशल केयर मिलती है कि साधु चल रहे हैं तो 3-4 बार आके बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभुपाद डिसाइपल, तो लोगों को बड़ा प्रभुपाद डिसाइपल विदेशी आदमियों में, तो मेरी एक स्टेटस बढ़ जाता है, उसके लिए मैं धोती कुर्ते का इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या ये सही है, मरकट वैराग्य ना करे लोक दिखाया, यथा योग्य विषया भुज अनासक्त हैया। अपने सारे विषयों को भोगो, खाना भी खाओ घर में भी रहो, लेकिन अनासक्त हैया। हाँ, तो बताया गया कि अनासक्त होकर व्यक्ति को अपने सारे काम करने चाहिए, उपयुक्त चीजों का भोग भी करे, लेकिन उसको ये सोचते हो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण के प्रचार के लिए है, तब वो व्यक्ति सही मायने में धीरे धीरे साधना सिद्ध हो पाएगा। और फिर एक दिन समय आने पर जब उसकी उम्र आएगी, जब 50% जीवन उसका निकल गया है, तो फिर वो वानप्रस्थ की ओर अग्रसर होगा। तो लोग सोचते हैं गृहस्थ का मतलब है कि जब 50% उम्र निकल जाएगी तब मैं सोचूंगा, नहीं, ग्रस्त का मतलब है जिस दिन से मैं ग्रस्त बना हूं उस दिन से मुझे अगले आश्रम की तैयारी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा आज मेरी एज हो गई 50, हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मैं वानप्रस्थ, अब मैं 75, आज मैं सन्यासी, ऐसा होता है क्या? घड़ी बदलते ही आश्रम नहीं बदलता, भाव नहीं बदलता, उस भाव को जागृत करने के लिए कई कई वर्ष लग जाते हैं। बहुनां जन्म जन्मान्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभम। वो आत्मा सुदुर्लभ है जो सोचता है हर चीज वासुदेव की है, और इसको पाने के लिए बहुनां जन्म जन्मान्ते कई वर्ष लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं व्यक्ति को। और आप सोचे अभी गृहस्थ तो एंजॉय कर लेता हूं, अभी मैं तो गृहस्थी हूं आश्रम आएगा सन्यास तब देखेंगे, नहीं, उसके लिए आज से तैयारी। ब्रह्मचारी जब है व्यक्ति तो उसको सोचना चाहिए कि मुझे सन्यास में जाना है कि गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ में जाना है तो किस प्रकार के गृहस्थ जाना है, गृहस्थ में है तो उसको सोचना चाहिए मुझे वानप्रस्थ में जाना है तो क्या क्या करना चाहिए। आज ही अपने घर का अपने मन का एनवायरमेंट ऐसा करें कि लगे देखने में कि वानप्रस्थी है व्यक्ति। तो कर्तव्यों को सिर्फ कर्तव्य मानकर करे, उनसे आसक्त ना हो। जैसे ट्रस्टीज होते हैं ना, उनको ऑर्गेनाइजेशन मिलता है ट्रस्टीज को, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्टी कुछ वर्ष तक ट्रस्टी रहता है, उसके बाद त्याग करके वो अपने टाइम आने पर छोड़ देता है और दूसरे को ट्रस्टी बनाकर चला जाता है। वो कभी आसक्त नहीं होता, रही है तो मेरी प्रॉपर्टी है मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। तो ऐसे जो व्यक्ति सोच रहा है ना, वो व्यक्ति गलत है, उसकी थॉट गलत है। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि किस व्यक्ति को शांति प्राप्त होगी, भगवद गीता में जिस प्रकार से परीक्षित महाराज को प्राप्त हुई, तो भगवद गीता के 18वें अध्याय में उन्होंने कहा क्या करना चाहिए व्यक्ति को, तो उसमें कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। उस व्यक्ति को शांति मिलेगी जो व्यक्ति तमेव शरणम गच्छ, आपकी शरण में आएगा, भगवान कृष्ण की शरण में जो व्यक्ति आता है सर्व भावेन भारत, हे भारत पुत्र, जो सब कुछ त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आता है, तत् प्रसादात परम शांति, उस व्यक्ति को शांति मिलेगी, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, और उसको फिर बाद में अपना शरीर छोड़ने के बाद में शाश्वत स्थान भी प्राप्त होता है। तो अगर वो करना चाहते हैं तो आज अपनी भावनाओं को बदलना पड़ेगा कि मैं वानप्रस्थी हूं, मैं सन्यासी हूं। हिजुलिनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक प्रवचन में बोल रहे थे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक सन्यास इन इस्कॉन, संन्यास लेना इस्कॉन में बहुत मुश्किल है, लेकिन गेटिंग द मूड ऑफ अ सन्यासी ये मुश्किल नहीं है। ये हम आज भी जागृत कर सकते हैं अपने अंदर। तो बताते हैं परीक्षित महाराज जो बहुत ही इतने विलक्षण संत थे कि अपना सब कुछ त्याग करके जब उनको पता चला कि अभी 7 दिन में मुझे तक्षक सर्प डसने वाला है तो कहां चले गए? सीधे कोर्ट गए और बोले वसीयत तो है ना जन्मेजय के नाम पे कर दूं। जन्मेजय उनके 4 पुत्र थे, उसमें से जन्मेजय सबसे बड़े पुत्र थे। सीधा कोर्ट गए, रोटरी नोटरी होता है ना, नोटरी वाले के पास गए और बोले लिखो लिखो जल्दी लिखो मेरा विल पेपर, 7 दिन बचे हैं, सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करनी है। हाँ, कोई बैंक वाले, कोई गवर्नमेंट, कोई छीन के ना ले जाए मेरे पैसे को। तो परीक्षित महाराज को इस तरह से कहा कि भाई आप क्या करूं, मुझे तो सारी प्रॉपर्टी। तो उन्होंने ये नहीं किया, हस्तिनापुर के किनारे गंगा थी वहां पर नहीं रहे, वो हस्तिनापुर से चलते हुए कहां चले गए? शुकताल, गंगा के किनारे। सोचा ही नहीं पलट करके। परीक्षित महाराज कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे जिनको किसी ने श्राप दिया और वो श्रापित हो गए। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बचपन में ही अपनी मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए, इसीलिए उनका नाम था विष्णुरात। परीक्षित महाराज का एक नाम था विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब है जिसकी रति विष्णु में, विष्णु रति अस्तु विष्णुरात, जिसकी विष्णु में रति है, जिसका मन सदा विष्णु में रहता है। और विष्णु शब्द का क्या अर्थ है? विष्णु शब्द का अर्थ है कि जो हर जगह विराजमान है। जैसे कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, वो है कृष्ण। ऐसे विष्णु का अर्थ है जो सब जगह विराजमान है। हाँ, कहते हैं ना इतो नरसिंहा ततो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, जो हर जगह विराजमान है वो उस चीज को विष्णु कहते हैं, इसलिए विष्णु। और वो ऐसे विष्णु में जिसकी रति हो उसे विष्णुरात कहते हैं। तो विष्णुरात उनका नाम था, उन्होंने भगवान को गर्भ में दर्शन किया। अब वो चाहते तो एक छोटे से बालक श्रृंगी के श्राप को ध्वस्त नहीं कर सकते, बंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस श्राप को ध्वस्त नहीं किया, उस श्राप को क्या किया, एक्सेप्ट किया। ये विनम्रता है व्यक्ति की कि मरने को तैयार है, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि अब पहले तो मैं बड़ा आसक्त था अपने परिवार में, सोच रहा था कौन सा दिन आएगा जब फैमिली को छोड़ूंगा, कौन सा दिन आएगा जब मैं मंदिर की तरफ अपने ध्यान को मोड़ूंगा। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति आ गई कि अब तो बस 7 ही दिन बचे हैं, तो अब तो मुझे सोचना ही नहीं है। उन्होंने तुरंत जन्मेजय को बोला ओके आई एम लिविंग, ऐसा भी नहीं बस निकल पड़े। और जन्मेजय को जब पता चला कि उनके पिता को एक तक्षक नाम का सर्प डसने वाला है, तो उन्होंने बड़े बड़े सर्प यज्ञ शुरू कर दिए और जगह जगह यज्ञ कुंड बनाए पूरे भारत पृथ्वी में, और हर स्थान पर यज्ञों में सर्पों को बुला बुलाकर उनको जला रहे थे, नाश कर रहे थे उनका, ताकि तक्षक आ जाए। भाई उसे तो पता नहीं कौन तक्षक है, किस रूप में है। तक्षक नाग जो था उसने ऋषि से प्रार्थना करी कि बताइए मेरी क्या गलती है, मुझे ऑर्डर मिला और मैं अपने ऑर्डर को पूरा करने जा रहा हूं, उपदेश आदेश मिला है अथॉरिटी से और मैं तो जस्ट फॉलो कर रहा हूं उसको, मेरी क्या गलती है, मुझे जला रहा है जन्मेजय। तो फिर उन्होंने जाकर जन्मेजय को समझाया कि देखो प्रारब्धों के अनुसार तुम्हारे पिता जो हैं वो मृत्यु के पाश में जाने वाले हैं, तुम मृत्यु को नहीं डाल सकते हो, तो क्यों तक्षक की जान के दुश्मन बने हो, बंद करो यज्ञ। तो समझा बुझाकर आत्म तत्व का ज्ञान देकर कि तुम्हारे पिता कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि जो मरेगा वो तो शरीर है और तुम्हारे पिता तो सच्चिदानंद आत्मा है। जब ये समझाया तो फिर उनको थोड़ा शांति मिली, तब जन्मेजय ने यज्ञ बंद किए, अन्यथा तक्षक महाराज मार देना चाहता था। ये इतना गुस्से में था, लेकिन परीक्षित महाराज को थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं, वो तो बस आनंद में थे, अब भागवतम कथा सुनने का टाइम हो गया, मिल गया मौका, और 7 दिन 7 रात तक भागवत कथा सुनने के लिए तत्पर थे। और कैसे, तो बताया है वस्त्रों का त्याग कर, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अपने वस्त्रों का त्याग कर वैराग्य लिया, ऐसे ही अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। युधिष्ठिर महाराज भी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे जो कि बड़ी आसानी से सब कुछ त्याग कर चले गए। आपको पता है युधिष्ठिर महाराज कब निकले अपने घर से, अपने राज्य से? जिस पल उनको पता चला कि कृष्ण स्वधाम को चले गए हैं, उस दिन के बाद उन्होंने कहा जब कृष्ण स्वधाम चले गए मैं राज करके क्या करूंगा, अब मेरे जीवन का क्या फायदा, मुझे भी वैकुंठ जाना चाहिए भगवान के पास। और उन्होंने उस दिन निर्णय लिया कि आज मुझे निकलना है। और युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे राजा थे जिनकी राजसभा में तकरीबन 10-20 हजार राजा रोज उन्हें प्रणाम करने आते थे, और इतनी भीड़ होती थी प्रणाम करने वाले लोगों की, जैसे मंदिर में कभी कभी फेस्टिवल में इतनी भीड़ होती है कि भगवान दिखाई भी नहीं दे रहे होते, सिर्फ सिर दिखते हैं। तो जो युधिष्ठिर महाराज जब गद्दी में बैठते थे तो नीचे 10-20 हजार राजा बैठकर उनको प्रणाम करते थे तो उनके मुकुट टकराते थे। तो भागवतम में वर्णन है मुकुटों की आवाज होती थी टंग टंग ऐसे ऐसे से टकराए, अरे भाई चंदन। तो किसको प्रणाम करते थे? युधिष्ठिर महाराज ना होते हुए भी कभी कभी उनकी गद्दी को प्रणाम किया जाता था कि जहां वो बैठते हैं वो भी पवित्र स्थान है। सोचिए इस स्थिति के राजा जिनको 10-20 हजार राजा प्रणाम कर रहे हैं वो तुरंत खड़े होते हैं, सोचते हो कि कृष्ण चले गए तो अब मुझे भी जाना चाहिए। और ऐसे ही परीक्षित महाराज ने सोचा ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है भागवत कथा सुनने का मौका। उन्होंने अनशन कर दिया, अनशन का मतलब समझते हैं, शन मतलब बंद करना, अन मतलब अन्न को बंद करना। हाँ अभी तो लोग जो अनशन करते हैं वो नकली अनशन करते हैं, अनशन करते हैं बाहर से बाहर या व्यवहार करते हैं, और अंदर से जब मीडिया चला जाता है तो जूस पी लेते हैं चुपके, और फिर बोलते हैं हमने 7 दिन अनशन किया 10 दिन अनशन किया। और अगर करते भी हैं तो भगवत गीता के अंदर बताया गया जो व्यक्ति व्रत आदि करता है अपने इंद्र तृप्ति के लिए या राष्ट्रीय के लिए भी वो व्यक्ति असुर है। भगवत गीता के परपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं वो व्यक्ति जो राष्ट्रीय प्रसन्नता या अपनी प्रसन्नता के लिए इंद्र तृप्ति के लिए गद्दी के लिए अगर व्रत आदि अनशन करता है तो वो असुर है। लेकिन उन्होंने किस लिए अनशन किया? भगवान की भक्ति के लिए, अपने वैराग्य के लिए उन्होंने अनशन किया। अनशन मतलब अन्न खाना बंद, यहां तक कि जल भी बंद कर दिया। 4 दिनों तक लगातार कथा का श्रवण करते रहे, और 4 दिन पूर्ण होने के बाद जब सुखदेव गोस्वामी ने सोचा अभी मैंने 9 स्कंदों को ऑलरेडी सुना दिया है, 9 स्कंद में समाप्त करता हूं, अब मैं 10वां स्कंद सुनाने जा रहा हूं, अब मैं कृष्ण के बारे में बताने जा रहा हूं, तो भाई बीच में कुछ पानी वानी चाहिए, रेस्ट, यू नीड सम ब्रेक। 1 घंटे की भागवत कथा के बाद हमारी कमर टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है और हम सोचने लगते हैं प्रसादम टाइम, पानी कब मिलेगा, प्रसाद कब मिलेगा। परीक्षित महाराज ने 4 दिन 4 रात तक 24 घंटे भागवत कथा सुनी, इसीलिए वो श्रवण के आचार्य बन गए। और सुखदेव गोस्वामी ने 4 दिन 4 रात तक लगातार बोला, इसलिए वो कीर्तन के आचार्य बन गए। और 4थे दिन उन्होंने पूछा कुछ जलपान ग्रहण करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इतने रस से भर गया हूं ना भगवान की कथा सुनकर, इतना पेट भर रहा है ना कि अब पानी ऐसी तुच्छ वस्तु पीने की तो इच्छा ही नहीं जागृत हो रही है, आप रोकिए मत सुनाते रहिए। और कैसे सुनाइए? अब आपने कृष्ण के बारे में सुना रहे हैं तो आप कृपणता मत दिखाइए, सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कृपणता मत दिखाइए, अभी तक आपने सारे अवतारों के बारे में सूक्ष्म रूप में सुनाया, अब कृष्ण के बारे में विस्तार रूप में सुनाइए। इसीलिए 10वां स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है, बाल लीलाओं से लेकर भगवान के 125 वर्ष तक की सभी लीलाओं का रस स्वादन उन्होंने कराया। रास अध्याय को 5 अध्यायों में बांटा, जिसे रास पंच अध्याय कहते हैं, पूरे रूप से विस्तार पूर्वक उन्होंने सुनाया भागवतम को, क्योंकि वो सुनना चाह रहे थे। आज तो हम रोकते हैं, हरि बोल प्रभु जी 2 मिनट कथा सुनेंगे, प्रभु लेट हो रहा हूं थोड़ा बाद में प्रभु जी प्लीज, सुनने को लोग तैयार नहीं है, हम सुनाने को तैयार है। तो सुखदेव गोस्वामी सुनाने को तैयार थे और परीक्षित महाराज सुनने को तैयार थे। अभी आप सोचो अगर कोई ये कहे कि क्लास के बाद जैसे आप लोग बाहर निकलेंगे आप में से किसी एक कोना एक मृत्यु रूपी आदमी खड़ा है जो अपने फावड़े या हसीए या हल से आपकी गर्दन काटने वाला है, तो कितने लोग यहाँ पर ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक कथा श्रवण कर पाए? सबको चिंता हो जाएगी कि मैं तो नहीं हूं यार, उसके साथ गड़बड़ किया था, वो तो नहीं आ गया बाहर, तुरंत सब आगे पीछे मोबाइल देखने लग जाएंगे। उनको पता है तक्षक रूपी सर्प मेरा वेट कर रहा है बाहर, इंतजार कर रहा है, और वो कथा को रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, पूरा फोकस एब्जॉर्ब्ड। राधानाथ स्वामी महाराज अपने प्रवचन में एक बार बोल रहे थे कि व्यक्ति को कथा हो जपा हो उसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन। जब कथा सुने तो एब्जॉर्ब्ड पूरा का पूरा ध्यान पूर्वक, तभी उसका फल है, अन्यथा कोई फल नहीं है। जैसे एक बार भागवत कथा चल रही थी एक जगह, उन्होंने कहा 7 दिन की भागवत कथा के बाद आप सबके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। वैकुंठ से विमान आएगा, कथा समाप्त हुई किसी के लिए विमान नहीं आया, तो बोले आपने तो कहा था कथा के बाद विमान आएगा, बोले मैंने कहा था जब कथा सुनोगे तो विमान आएगा। आप में से कितनों ने सुनी? तीन घंटे की चार घंटे की कथा हो रही थी, उसमें से डेढ़ घंटा कीर्तन चल रहा था, डेढ़ घंटा कथा हुई, उस कथा में भी आपने ये सोचते रहे कि घर में क्या चल रहा होगा, बच्चों को बोल के आए थे पता नहीं दूध गर्म किया होगा नहीं किया होगा, गैस के सामान आए गैस वाला आ गया होगा, बिजली के बिल का क्या हुआ होगा, मुझे ऑफिस जाना था लेट हो जाऊंगा तो बॉस क्या बोलेगा, आज क्या जवाब दूंगा, ये सब चीजें चल रही है। तो कृष्ण जो भगवान के ब्रह्मांड नायक है पूरे ब्रह्मांड के, उनको हमने क्या वैल्यू दिया? वो वैल्यू जो व्यक्ति देगा उसके लिए विमान आएगा। तो फिर उन्होंने ध्यान पूर्वक कथा सुना, जब कथा दोबारा से हुई फिर कथा सुना, उन्होंने कहा आप सुना अभी विमान नहीं आया, तो उन्होंने कहा तुम लोग मूर्ख हो, उन्होंने कहा हाँ मूर्ख हैं, तो उन्होंने आ तो गया विमान, क्या मतलब कह रहे हैं अगर किसी को मूर्ख कहा जाए और उसके बाद वो कहे हाँ मैं मूर्ख हूं, तो इसका मतलब उसके जीवन से मान सम्मान चला गया, विमान मतलब विगत मान, उसके जीवन से मान सम्मान की अभिलाषाएं समाप्त हो गई, तो मान चला गया इसका मतलब विमान आ गया आपके लिए, वैकुंठ धाम जाने के लिए तैयार हो क्योंकि अब मान सम्मान की अभिलाषा समाप्त हो गई है, तो जिस पल भी मृत्यु आएगी आप तैयार रहेंगे। तो और समय ले सकता हूं थोड़ा सा, आप कितने लोग चाहते हैं बोलना चाहें इस टॉपिक पे, जिसे जिसे प्रसाद का इंतजार हो वो जा सकते हैं और कल को सुन सकते हैं, तो मैं सिर्फ 10 मिनट और कथा सुनाऊंगा इसके बारे में ताकि और अच्छे से हम इस टॉपिक को समझ सके। तो एक बार श्रील प्रभुपाद अपने जीवन से बता रहे हैं, अपने जीवन चरित्र से, कि किस तरह से व्यक्ति को हर एक चीज में, जिस तरह से परीक्षित महाराज विष्णु रात कहलाते हैं, हर चीज में कृष्ण का दर्शन करते हैं, तो हम भी हर चीज में कृष्ण का दर्शन करें, श्रील प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी एक बार लॉस एंजलिस में आसमान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अपने भक्त से, व्हाई स्काई इज ब्लू, आसमान नीला क्यों है? तो भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद पता नहीं, फिर प्रभुपाद ने पूछा अच्छा बताओ कृष्ण का रंग क्या है? तो एक भक्त बोला हमने सुना है घन घनाते घनघोर बादलों का जो काला रंग है वो कृष्ण का रंग है, घनघोर बादल का जो रंग है वो कृष्ण का रंग है। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, आसमान का रंग नीला इसलिए है क्योंकि कृष्ण की कांति उसको नीला बना रही है, इसलिए जब भी आसमान की तरफ देखो तो ये सोचो कि कृष्ण की कांति, नीले वस्त्र नीला जो रूप है उनका, उसकी कांति उनका रिफ्लेक्शन पूरे आसमान में फैला हुआ है। तो इस तरह से अगर सोचें तो उन्होंने कहा आसमान ही कृष्ण है, ऐसे कर कर प्रभुपाद जी सोचते थे। एक बार प्रभुपाद रात्रि में शाम के समय अपने बगीचे में टहला करते थे और टहलने के बाद में जब वापस अपने स्थान पे आते थे अपने रूम में, तो अपनी भागवतम की जो सुबह क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग सुनते थे कि मैंने इसमें क्या बोला, मुझे और क्या बताना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें वो वर्णन करते थे। तो एक दिन उन्होंने जब बगीचे में घूम रहे थे तो उसी समय उन्होंने देखा कि वहां पर एक चमेली का फूल का वृक्ष है और उसकी खुशबू चमेली के फूल में बहुत आती है, तो उन्होंने सूंघा और कहा ये तो कृष्ण है, मतलब खुशबू में भी कृष्ण है, मतलब जो सबसे सुगंधित वस्तु है वो क्या है, कृष्ण है, प्रभुपाद जी के लिए जो बेस्ट है वो कृष्ण है। तो उन्होंने कहा इस फूल को तोड़कर मेरे रूम में ले आओ, तो भक्त गए फूल तोड़ा और बोले प्रभुपाद जी कहाँ रखें, तो प्रभुपाद जी अपने बिस्तर के पास में उस फूल को रख लेते थे, तो रात को उन्होंने उस फूल को वहां रखा और प्रभुपाद जी उसको सूंघते हुए सो गए कृष्ण के संग। और फिर जब सुबह जागृत हुए और उठकर के अपना जपा करने चले गए तो भक्त उनका रूम क्लीन करते थे, तो भक्त जब रूम सफाई करने के लिए आए तो देखा कि वो फूल ताजा का ताजा था, एज इट इज, मतलब जैसा रात्रि में तोड़ के रखा था वैसा ही खुशबूदार फूल, वरना हमारे पास रखा जाता तो हमारे हाथ से मसल जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसका वो झड़ जाता, वो मुरझा जाता, लेकिन प्रभुपाद के संग में कृष्ण भी प्रसन्नता पा रहे थे, जैसे अर्जुन के संग में कृष्ण प्रसन्न रहते थे, तो फूल अगर खुशबू कृष्ण थी तो भक्त के संग में वो चीज भी प्रफुल्लित थी, फूल भी प्रफुल्लित था, खिल रहा था वो आज भी सुबह तक, चार पांच घंटे बाद, छह घंटे दस घंटे बाद खुल रहा था वो फूल, तो ऐसा भक्त के संग में होता है। और एक बार प्रभुपाद जी सियाचलम एक जगह है जहां पर नरसिंह भगवान का मंदिर है, विशाखापट्टनम से तकरीबन पांच मील की दूरी पर है सियाचलम एक स्थान है, वहां पर काफी सारे भक्त जाते हैं नरसिंह भगवान का दर्शन करने, विशाखापट्टनम से पास में स्थान पड़ता है। एक हिजोलिनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज की एक बुक है पिलग्रिमेज टू इंडिया, उसमें भी उन्होंने सियाचलम के बारे में वर्णन किया है, वो गए हैं। तो इस तरह से सियाचलम एक भगवान नरसिंह का एक बहुत सुंदर स्थान है, तो वहां पर एक वृक्ष था, प्रभुपाद जी उस चंपक फूल होते हैं ना, पीले पीले फूल थे चंपक, पीत वर्ण, उसके नीचे खड़े हो गए। और खड़े होकर प्रभुपाद उस वृक्ष को आलिंगन करने लगे। तो भक्त बोले, प्रभुपाद आप भक्त तो फॉलो करते थे, सारे भक्त आकर छूने लगे। तो प्रभुपाद बोले, क्यों छू रहे हो आप? तो कह रहे, प्रभुपाद क्योंकि आपने छुआ। प्रभुपाद जी जानते कौन है ये? कह रहे हैं, प्रभुपाद पता नहीं। तो प्रभुपाद बोले, जपा कर रहे थे, तो आपने एक पिक्चर देखा होगा प्रभुपाद का, जपा कर रहे हैं और हाथ में एक फूल है, फोटो कई बार आपने देखा होगा, चैंटिंग कर रहे हैं, बीड बैग से उंगली बाहर है और इस उंगली से उन्होंने ऐसे करके फूल को पकड़ा हुआ है ऐसे करके, और जपा भी कर रहे हैं। तो जपा कर रहे थे प्रभुपाद, तो भक्त ने आकर फूल तोड़ा और उनके हाथ में दिया, और जब उन्होंने फूल को देखा तो कहा, हे गौरांग महाप्रभु, ये और चैतन्य महाप्रभु है। उन्होंने कहा, कैसे? तो उन्होंने कहा कि राधा रानी का जो रंग है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वही रंग लेकर, वही रूप लेकर चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो इनका अगर रंग देखना है तो पीत वर्ण चंपक जो है ना, इसका रंग बिल्कुल गौरांग। अब देखिए, हर वस्तु में कहीं कृष्ण नजर आ रहे हैं, कहीं खुशबू में कृष्ण नजर आ रहे हैं, कहीं रंग में महाप्रभु नजर आ रहे हैं, ये है वैसा। और डिक्टा फोन यूज कर रहे हैं, मर्सिडीज कार में चल रहे हैं, एरोप्लेन में बैठ रहे हैं, और कोई बोले सोचे यार ये तो नकली है, नहीं, ये है श्रील प्रभुपाद, ये सच्चा वैराग्य है। हाँ, तो इस तरह से हमें समझना चाहिए अपने जीवन में, हर चीज से हम वैराग को अपने जीवन में लेके आए। प्रजापति दक्ष थे ना, दक्ष आप जानते हैं उनके बारे में, प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति दक्ष। दक्ष का मतलब है एक्सपर्ट, दक्ष होता है ना, बड़े दक्ष है अपनी सेवाओं में, एक्सपर्ट। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी से, पंचजनी से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया और कहा कि तुम सबका कर्तव्य क्या है, ग्रस्त जीवन में आना और संसार की रचना करना। ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया, सृष्टि रचना करो, सृजन करो, तो मैं सृजन करने के लिए आया हूं, और मेरे पुत्र को, दक्ष को मैंने इजाजत दी, दक्ष ने अपने पुत्रों को इजाजत दी कि जाओ। तो उन सारे पुत्रों का नाम उन्होंने रखा था हर्यश्रवा, हर्यश्रवा, 1000 पुत्र दिखने में भी एक जैसे थे, तो कम्युनिटी को नाम दिया उन्होंने पूरे 1000 पुत्रों को हर्यश्रवा। तो हर्यश्रवा जो थे 1000 पुत्र को उन्होंने आदेश दिया, जाओ ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने से पहले तपस्या करो। इसलिए ग्रस्त जीवन में जो भक्त है ना, प्रभुपाद भी कहते थे, विवाह करने से पहले, पत्नी का संग करने से पहले 32 मालाओं का जप करना चाहिए। तो ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने से पहले भी कृष्ण कितने मुख्य हैं, ताकि हमारी चेतना कृष्ण भावना भवित रहे। तो प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्र को कहा, तपस्या करो जंगलों में जाकर, और वो जंगल में गए और उत्तरी दिशा में एक नदी थी जिसका नाम था सिंधु नदी। हाँ, सिंधु नदी, जिससे हम लोग हिंदू बन गए बाद में, सिंधु नदी के पास रहने वाले। तो सिंधु नदी के किनारे जो अरब सागर में जाकर मिलती है, वहां पर एक स्थान था जिसे बोलते थे नारायण सरस स्थान, सरोवर था। उस नारायण सरस पर कई बड़े बड़े संत महात्मा बैठकर ध्यान करते थे। तो ये सारे के सारे पुत्र, प्रजननी के और दक्ष के पुत्र, जाकर वहां खूब ध्यान तपस्या करने लगे। नारद मुनि वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि अरे ये व्यक्ति तो बैठकर तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या का फल क्या चाहते हैं? ग्रस्त जीवन, मतलब भक्ति करे, तपस्या करे, उससे क्या चाहे? मेरा ना 3 मंजिल का मकान बन जाए। ये व्यक्ति अगर कोई माला का फल ये चाहता है ना, और अगर उसमें आसक्त है, उससे निकृष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति घर गृहस्थी में जुड़ना चाह रहा है और पैसे कमाना चाह रहा है, बहुत बड़ा बनना चाह रहा है, वो व्यक्ति भक्ति तो अभी उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला राजा प्रताप रुद्र उनसे मिलना चाहते हैं, तो नाम के आगे राजा लगा था, लेकिन वो बहुत बड़े वैष्णव थे, फिर भी महाप्रभु ने कहा, इसके नाम के आगे राजा लगाया ना, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। संत जो होते हैं ना, वो पैसे वाले व्यक्तियों से मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहते, उनका संग बिल्कुल नहीं करना चाहते। और जो पैसा ही कमाना चाहता है संत बन के, वो फिर संत थोड़ी है, वो कैसा है? मरकट वैरागी, दिखावटी भक्त है। वो बोलेगा बहुत अच्छा, चलेगा बहुत अच्छा, लेकिन नकली है वो। हाँ, ऐसा भागवतम में वर्णन है। तो फिर जब ये 1000 पुत्रों को उन्होंने देखा, कहा इनका तो रास्ता गलत है, तो प्रीचिंग मोड है नारद मुनि का, उन्होंने तुरंत वहां पर 1 घंटे का लेक्चर दे डाला। और 1 घंटे के लेक्चर में क्या हुआ पता है? 1000 के 1000 पुत्रों ने ग्रस्त जीवन को त्यागने का सोच लिया, अभी तो गए भी नहीं थे, और IYF से डायरेक्ट ही सन्यास के लिए सोच लिया, सीधा यूथ फोरम से, अभी तो गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया, डायरेक्ट कहां चले गए? सीधा सन्यास की ओर अग्रसर हो गए और वैकुंठ की तरफ जाने लगे। अब वापिस नहीं आए, जब दक्ष को पता चला मेरे 1000 पुत्र इतने वैरागी हो गए कि वापिस ही नहीं आए, तो वापिस पहुंचे, देखा सारे पुत्र कहां हैं, तो सब पिता को प्रणाम कर वैकुंठ चले गए। अरे अब तो बड़ा दुख हुआ, तो अपने क्रोध में आकर प्रजनी अपनी पत्नी से, पंचजनी से कहा कि अब मुझे प्रजनन करना पड़ेगा और पुत्रों का, तो उन्होंने 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम उन्होंने रखा स्वालश्व, पहले का नाम रखा था हरिश्व, इनका नाम रखा था स्वालश्व। अब ये जो 1000 पुत्र थे इनको भी आदेश दिया, जाओ नारायण सरस सरोवर के किनारे सिंधु नदी के पास तपस्या करो और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। बेचारे बैठकर अपने पिता के अनुसार वासुदेव परायण होकर वासुदेव का भजन कर रहे थे, अचानक नारायण नारद मुनि फिर आ गए। नारद मुनि बोले वो फिर से IVF के स्टूडेंट्स। और फिर उन्होंने एक और लेक्चर दे डाला 1 घंटे का। अभी 1 घंटे का और लेक्चर दिया तो नारद मुनि के प्रचार में इतना दम है कि वो सारे के सारे दोबारा सेमिनार की जरूरत ही नहीं है, DYS करूं ये करूं वो करूं, डायरेक्ट एक ही लेक्चर में तुरंत सबके सब फिर से भक्त बन गए वैरागी और सब वैकुंठ की तरफ जाने लगे। तब जब वैकुंठ की तरफ जा रहे थे तो उनको बहुत दुख हुआ, उनके पिता को। उन्होंने कहा मैं इतनी मुश्किल से बार बार 1000 पुत्र उत्पन्न कर रहा हूं और ये 2 मिनट में उनको वैकुंठ धाम भेज देते हैं। ऐसे ही जो लोग IYF में आते हैं या ब्रह्मचारी बनते हैं उनके माँ बाप बड़ी गालियां देते हैं मंदिर को कि हमारे बच्चों को ले गए, हमारे बच्चों को ले गए। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे बॉम्बे के, उन्होंने कहा एक माँ बाप आ गए लड़ने के लिए, कहा आपने हमारे बच्चे को मंदिर में रख लिया, ये कोई उम्र है भजन करने की? तो प्रभु जी ने कहा, जो मंदिर में थे, कहा ठीक है प्रभु जी, उसके पिता लड़ने आए थे, उनकी उम्र 50-55 साल थी और बेटे की 21-22 साल थी। कहा ये कोई उम्र है भजन करने की? हाँ भाई हमारी उम्र हो तो समझ में आता है। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप रह जाइए, इसको छोड़ देते हैं। तो ये बोले कि ठीक है पत्नी से पूछ के बताऊंगा। आप पत्नी से पूछ करके बताऊंगा। और जब घर गए तो पत्नी को बोले कि देखो मेरे को ना, उन्होंने कहा बेटा तब छोड़ेंगे जब आप रह जाओ। तो बात तो सही है, मैंने ही कहा था 50-55 की उम्र भजन की ठीक है, और मेरी 50-55 हो गई है तो अब मुझे भी वानप्रस्थ बन जाना चाहिए, जाना चाहिए। पत्नी बोली अच्छा ऐसी बात नहीं है, अगर आप चले गए तो धन कौन कमाएगा, घर कैसे चलेगा, वो तो अभी कमाता भी नहीं, कॉलेज में पढ़ता है, उसको जाने दो आप रह जाओ। तो फिर पिताजी आए उनके और कहा बेटा रख लो हमें छोड़ दो। तो इस तरह से यंग अवस्था से डायरेक्ट संन्यास में जाए तो माँ बाप को गुस्सा आता है। तो उनको बहुत गुस्सा आया, दक्ष ने आकर जो है ना श्रापित करने वाली स्थिति में आ गए, नारद मुनि को श्राप दिया उन्होंने। और नारद मुनि को ऐसा श्राप दिया, कहा तस्मात लोकेशु ते मूढ़ा, मूढ़ा कहा मूर्ख, तस्मात लोकेशु ते मूढ़ा ना भवेद भ्रमात्पदम। ऐसे श्राप दिया कि अब तेरे पांव कहीं टिकने नहीं चाहिए, 1 घंटे का लेक्चर तू कहीं बैठ कर दे ना सके, ऐसा मैं तुझे श्राप देता हूं। क्योंकि अगर तुमने फिर से लेक्चर दिया मैं फिर 1000 पुत्र उत्पन्न करूंगा, फिर ले जाएगा उनको। तो ऐसा श्राप दे के तू लेक्चर ही ना दे सके, प्रवचन ही ना दे सके 1 घंटा, तेरे पद जो है वो एक जगह स्थानित ना रहे। इसलिए नारद मुनि उस श्राप को एक्सेप्ट किए। ह्यूमिलिटी देखिए, इतने बड़े प्रचारक होकर हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा, और उस श्राप को एक्सेप्ट कर उन्होंने क्या किया, मैं उसको सोचा ये क्या है मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि अभी तो मैं 1-1.5 घंटे एक जगह बोलना पड़ता था, अब तो 10-10 मिनट कथा चलेगी और कई लोग इससे लाभान्वित होंगे तीनों लोकों में। उन्होंने कहा ये सोचा, ये नहीं सोचा कि मेरे को क्या श्राप दे दिया यार, मैं तो लेक्चर ही तो दे रहा था, क्या गलती थी, कथा ही तो कर रहा था, ऐसे बोल दिया यार। तो ऐसा कुछ नहीं था और बड़े ही प्रसन्न चित हुए। तो श्रील प्रभुपाद इस कथा से हमको एक शिक्षा और देते हैं, वो कहते हैं भागवतम में आता है ना अनुभय ना जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम निर्वधते स्वयं तस्मात् न तथा भिन्नादि पर। कोई भी व्यक्ति भौतिकता को तब तक नहीं छोड़ सकता, ऐसा दक्ष ने कहा, जब तक वो भौतिकता को आनंद ना ले ले। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं जी पहले भोग तो करने दो, संन्यास की बातें कर रहे हो, अरे बच्चों ने अभी जीवन देखा नहीं, भजन करेंगे। तो यहां पर वही दक्ष उनको बोल रहा है कि ना अनुभव ना जानती, ना अनुभव है, ना जानते हैं कुछ। पुमान विषय तीक्ष्णात, विषय इनके अंदर उबाल पा रहे हैं, इनको विषय भोगने तो दो, उसके बाद इनको ले जाना ब्रह्मचारी तनाव और सन्यासी बनाना, पहले इनको विषय भोगने दो। तो ये वही वाली बात है, कोई कहे कि भाई मैंगो शेक पीने में तभी आनंद आता है जब करेले का जूस पी लो, ऐसा होता है? करेले का जूस भौतिक संसार और भगवान की भक्ति मैंगो शेक। तो मैंगो शेक पीने में तभी आनंद आता है जब पहले करेले का जूस पिया हो। कितने लोग पीते हैं करेले का जूस मैंगो शेक से पहले? मैंगो शेक ही मैंगो शेक पी रहे और हर बार आनंद आ रहा है। इसका मतलब भौतिक संसार को भोगने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यू कैन एंटर इनटू कृष्ण भावना भवित। कृष्ण भावना भवित होने के लिए आप सीधा जाएंगे और आप बिना अनुभव के उसका आनंद उठा पाएंगे। ये नारद मुनि ने कहा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो स्त्री होती है वो सोचती है मैं गर्भवती का पेन इतना है, इतना दर्द है गर्भ जब धारण करती है, और प्रसव पीड़ा इतनी ज्यादा होती है कि उसके बाद वो सोचती है कि अब मैं तो इससे अच्छा है ना बच्चा ही ना पैदा करूं, और उसके कुछ दिनों बाद फिर से गर्भवती हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं भौतिक संसार की इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, वापस आपको भौतिक संसार में खींच लेंगी, इसलिए बेहतर यह है कि इनसे दूर ही रहा जाए। तो दूर रहना जो है वो उत्तम निर्णय है, और हम चाहे गृहस्थ में हो चाहे ब्रह्मचारी में हो, वैरागी तभी आएंगे जब भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का श्रवण, हरिनाम जप और भक्तों के आचरण के प्रति हमारी रुचि होगी, ना कि भौतिक भोग को बैलेंस करने की कि प्रभु जी क्या करें परिवार के लिए करना पड़ता है। जब तक आप करते रहेंगे तब तक आपके रास्ते बंद रहेंगे। जिस दिन आप सोचेंगे अब तो मुझे सिर्फ कृष्ण संतुष्टि करनी है, अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, बस मैं संतुष्ट हो गया ना तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाएगा, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नो बैलेंसिंग, को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, पिछले श्लोकों में बताया गया तीक्ष्णात् संचिन्न, उन्होंने इतने सारे शब्दों को निर्मोहम इतना बुरी तरह से बोला, वैराग्य को काट दिया युधिष्ठिर महाराज ने, सारे अपनी आसक्तियों को समाप्त कर निकल पड़े हैं वैराग्य की तरफ। तो ऐसे ही भक्त को भी चाहे वो किसी आश्रम में हो वैराग्य की भावनाओं को जागृत करना चाहिए। हो सकता है कि अभी वो घर में रहता हो लेकिन भावनाओं में उसको संचिन्न सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सारी भावनाओं को काट देना चाहिए, सिर्फ एक भावना रहनी चाहिए मुझे सिर्फ क्या करना है भगवान का भक्त बनने के लिए जीवन मिला है और वही कार्य मुझे करना है। तो इसलिए उत्तर दिशा में युधिष्ठिर महाराज चले और वो भी भगवान के भक्त बनना चाहते थे और अंत में वैकुंठ धाम को गए, क्योंकि जहां भी गए उसमें लिखा है वहां प्रवेश करने की इच्छा करने वाले अपने पूर्वजों द्वारा सुकृत पथ विशाल हृदय के कारण हृदय के भीतर परमेश्वर परम निरंतर ध्यान करते हुए अपने दिन बिताए। जहां कहीं भी गए उन्होंने परमेश्वर का ध्यान किया। ग्रह था के वना था के सदा हरि, तो सदा हरे कृष्ण जप करते रहिए और वैराग्य को अपने जीवन में लाइए, सच्चे वैराग्य को, मार्केट वैराग्य को नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय, गौर निताय की जय, पते पावन श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। Yeah!